राजवीर शर्मा के बारे में पता लगाने की उत्सुकता में आहान विजय के पास गया। वो गुस्से में ये बात भूल गया था कि आहान विजय के सामने इस बात का ड्रामा कर रहा है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। गुस्से में आहान ने विजय ओबेरॉय से राजवीर शर्मा के बारे में पूछ लिया और इससे विजय को पता चल गया था कि आहान की याददाश्त अभी लौटी नहीं है। विजय ने राजवीर के बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया। गुस्से में आहान ने उसे पीटा और फिर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद दामिनी विजय को संभाल रही थी। दामिनी ने विजय का खून अपने दुपट्टे से साफ करते हुए उदास स्वर में कहा, तुम ठीक तो हो ना? आहान से उलझना सही नहीं है। सोचो, इसे जब कुछ याद ही नहीं है तब ये इतना खतरनाक है, तो सब याद आने के बाद ये क्या करेगा? इससे अब कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात, आहान को राजवीर के बारे में नहीं पता है। इसे जब तक सारी बातें याद आएगी तब तक राजवीर इसे बुरी तरह बर्बाद कर चुका होगा, विजय ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, हमसे बेहतर उसे बला को कौन पहचान सकता है? दामिनी ने गहरी सांस लेकर कहा। विजय से पहले दामिनी उसी के साथ रिलेशन में थी। कुछ पल रुककर दामिनी ने विजय से कहा, अच्छा विजय, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे हम राजवीर से कांटेक्ट कर सके? वो हमें यहाँ से आराम से निकाल सकता है। हम उसे मदद मांगेंगे तो वो कर भी देगा। ऊपर से अगर राजवीर का साथ मिला तो आहान की अकल ठिकाने लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि इस बंद कमरे में मैं कोई मोबाइल लेकर बैठा हूँ? विजय ने इरिटेट होकर कहा। जानती हूँ, लेकिन कोई तो तरीका होगा ना जिससे हम राजवीर से बात कर सके? उसे तो पता भी नहीं हम किस हाल में हैं। अगर पता होता तो वो हमारा साथ जरूर देता, दामिनी ने मायूसी से जवाब दिया। उन्हें किडनैप हुए 2 या 3 दिन ही बीते थे। उतने में ही दामिनी पूरी तरह बदल गई थी। पहले वो कॉन्फिडेंट रहती थी तो अब उसे हर चीज में नेगेटिविटी ही नजर आती थी। कुछ पल दामिनी के चेहरे की तरफ देखकर विजय ने सख्ती से कहा, कुछ ज्यादा ही जल्दी हार नहीं मान ली तुमने? तुम्हें तो पहले भी आहान ने किडनैप करके रखा था। पहले वामिका पैदा नहीं हुई थी। हाँ, मैं प्रेग्नेंट थी तो डर लगा रहता था, पर साथ ही इस बात की तसल्ली थी कि तुम बाहर हो तो मुझे कैसे न करके ढूंढ ही लोगे। अब तुम भी यहाँ मेरे साथ फंस गए हो तो डर लग रहा है। ऐसे में राजवीर ही है जो आहान से मुकाबला करके हमें यहाँ से बचा सकता है, पर उसके लिए राजवीर को सब सच का पता भी होना चाहिए, दामिनी ने जवाब दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विजय ने सिर हिलाकर कहा। आहान वहाँ कंपनी टेकओवर करने के लिए पहुंचा था। उसी के साथ आज भी समझ गया होगा कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। रही बात आहान से निपटने की, तो उसके लिए हमें राजवीर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। राजवीर ने आहान को देख लिया है तो वो उसकी जिंदगी वैसे ही जहन्नम बना देगा। बोलते हुए अचानक विजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मानो उसे अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। विजय का मोहरा राजवीर शर्मा बाहर था। ऊपर से आहान को कुछ याद नहीं आया था तो वो राजवीर से अवेयर भी नहीं रह सकता था। विजय खड़ा हुआ और उठकर पानी पीने लगा। इस वक्त उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। वो अपने मन में बोला, आहान ओबेरॉय, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बेटा हमेशा बेटा रहता है और बाप हमेशा बाप, फिर भी तुम मुझसे आगे निकल गए। घर कोई बात नहीं, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। राजवीर शर्मा से तुम कभी नहीं निपट पाओगे और वो तुम्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। दूसरी तरफ बेसमेंट से निकलकर आहान ऊपर गया। इस वक्त उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसकी आंखें लाल थी। आहान को पता था कि तनु और श्रद्धा वहां आई हुई है, पर फिर भी उसे चाहत से मिलना था। आहान चाहत से मिलने के लिए सीधा ऊपर कमरे में पहुंचा तो उसने देखा तनु और श्रद्धा वहीं पर थी। चाहत हंसते हुए श्रद्धा के कंधे पर हल्का सा मारते हुए बोली, तुम ना अभी भी वैसे ही पागलों जैसी बातें करती हो, मेरे पेट में दर्द होने लगा है, अब बस करो। चाहत की बात सुनकर तनु ने कहा, मैडम, ऐसी हालत में हंसना और खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी तो पता चले कि उसकी मॉम की फ्रेंड्स उसे कितना खुश रखती है। हाँ हाँ, उसे सब पता है, चाहत ने मुस्कुराकर कहा। वो आगे कुछ कहता उससे पहले उसकी नज़र आहान पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा उसी को देख रहा था। अचानक चाहत के होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो थोड़ा सीरियस अंदाज में बोली, आहान, बाहर क्यों खड़े हैं आप? अंदर आ जाइए। चाहत के बाद तनु और श्रद्धा ने भी आहान की तरफ देखा। श्रद्धा और चाहत के लिए भले ही आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर कुछ पता लगा पाना मुश्किल हो, लेकिन तनु को उसे देखते ही सब समझ आ गया। तनु ने आंखें छोटी की और धीरे से बड़बड़ाकर कहा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में कुछ हुआ था क्या? ये इतना गुस्से में क्यों लग रहा है? ऊपर से मैं और श्रद्धा भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, जरूर ये चाहत से बात करने के लिए आया होगा। आहान के गुस्से में मुट्ठियां बंधी हुई थी। चाहत उठकर उसके पास जाने लगी, लेकिन उससे अचानक से खड़ा नहीं हो रहा था। चाहत को खड़े होने में स्ट्रगल करता देखा आहान अंदर की तरफ आते हुए बोला, तुम्हें खुद को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है डॉल, यहाँ सब ठीक है, मुझे बस तुमसे बात करनी थी। हाँ तो कर लो, हम बाहर चले जाते हैं, तनु ने जल्दी से कहा। इस वक्त आहान की बात ना मानना मतलब उसे और गुस्सा दिलाना था। श्रद्धा कुछ कह पाती उससे पहले तनु ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो ना बाहर चलते हैं, हम क्यों कबाब में हड्डी बनने का काम कर रहे हैं? तनु जबरदस्ती श्रद्धा को बाहर ले गई। उनके जाते ही आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस फिर से सीरियस हो गए। चाहत ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर पूछा, कुछ हुआ है क्या? आप परेशान लग रहे हो आहान। विजय ओबेरॉय को पता चल चुका है कि मैं याददाश्त लौटने का दिखावा कर रहा हूँ, आहान ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है चाहत, और समझ नहीं आ रहा कैसे खुद को कंट्रोल करूं। लगता है कि विजय ओबेरॉय नाम की मुसीबत कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ऊपर से एक और शख्स आ गया है। चाहत ने प्यार से आहान के गाल पर हाथ रखा। वो धीरे धीरे उसे सहला रही थी। चाहत ने शांत लहजे में कहा, आप बस खुद को शांत रखिए और फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। विजय ओबेरॉय वैसे भी आपके कैद में है, तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरा शख्स जो भी आया है वो भी अकेला कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस आप खुद को तैयार रखिए, चाहत काफी प्यार से आहान को समझा रही थी कि तभी अचानक आहान ने चाहत के होठों को कैप्चर कर लिया। सिर्फ चाहत ही थी जो आहान के गुस्से को शांत कर सकती थी। उसके करीबी आहान को सुकून देती थी, पर ऐसी हालत में आहान चाहत को तकलीफ भी नहीं देना चाहता था। वो उसे काफी सॉफ्टली किस कर रहा था, जबकि गुस्से में होने पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। एक लंबे किस के बाद आहान ने चाहत को छोड़ दिया। वो गहरी सांस लेकर बोला, खुद को तैयार रखता हूँ, पर मेरी मुसीबत यह है कि मुझे कुछ याद नहीं है। ये नया शख्स जो भी आया है वो मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है चाहत। उसने कहा कि मेरी गुस्से की बीमारी या आज मैं जैसा भी शख्स बन गया हूँ वो उसकी वजह से है। जो बचपन में मुझे इस हद तक बर्बाद कर सकता है वो अब किसी भी हद तक जा सकता है। और आप कब से इन जैसे लोगों से घबराने लगे? हाँ, बचपन में उसने जो भी किया क्योंकि तब आप बच्चे थे, लेकिन अब बड़े हो गए हो और ऐसे लोगों से निपटना आपको अच्छे से आता है। स्ट्रेस मत लीजिए वरना कुछ समझ नहीं आएगा, चाहत ने मुस्कुराकर कहा। आहान का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया था।
आहान ने हल्का मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। फिर चाहत ने हल्के लहजे में कहा, चलिए अब मेरी उठने में हेल्प कीजिए। आई होप जल्दी से बच्चा डिलीवर हो जाए तो मुझे उठने बैठने में तो दिक्कत ना हो। आहान चाहत को उठाते हुए बोला, कोई बात नहीं डॉल, जब तक मैं हूँ तुम्हारा हर छोटा काम कर दूंगा और तुम्हें बॉदर होने की जरूरत नहीं है। आज इतने दिनों में पहली बार आहान के मुंह से जेन्युइनली चाहत के लिए डॉल शब्द निकला था, वरना तो वो सबके सामने नॉर्मल रिएक्ट करने के लिए उसे डॉल करता था। अकेले में चाहत को वो उसके नाम से ही बुलाता था। आहान के मुंह से डॉल सुनकर चाहत ने हल्का मुस्कुराकर कहा, आहान आपने अभी अभी मुझे डॉल कहा? हाँ, तो अपनी डॉल को डॉल नहीं कहूंगा तो कुछ और कहकर बुलाऊंगा क्या? आहान ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जवाब दिया और फिर चाहत के फॉरहेड पर किस किया। तो क्या आपकी नाराजगी दूर हो गई है? आपने मुझे माफ कर दिया है ना आहान? चाहत ने मासूमियत से पूछा। आहान ने रुककर चाहत का चेहरा अपने हाथों में भरा, फिर वो चाहत की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोला, नाराजगी अपनों से ही होती है। फिर तुम तो मेरा हिस्सा हो डॉल, अब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो इस बात के लिए मैं खुशियां थोड़े ना मनाऊंगा, नाराज ही होना चाहिए मुझे। रही बात माफी मांगने की, तो माफी मुझे मांगनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं पहले कैसा शख्स था, लेकिन अब सोचकर ही खुद पर शर्म महसूस होती है कि अपना गुस्सा शांत करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। चाहत ने आहान का हाथ पकड़ा और बोली, हाँ हमारी रिलेशनशिप का वो फेज बहुत बुरा था, पर फिर भी आपने मेरी बहुत केयर की थी, मेरी मॉम का ट्रीटमेंट करवाया और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आपके प्यार में मेरे सारे जख्म भर दिए थे आहान, बहुत पहले ही मैंने आपको गलत समझा। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी, पहली और आखिरी गलती होगी। आई प्रॉमिस अब मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। चाहत की बात खत्म होते ही आहान ने चाहत को अपने सीने से लगा लिया था। वो धीरे धीरे उसे सहला रहा था। आहान और चाहत के बीच सब ठीक होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर शर्मा इस वक्त अपने ऑफिस में केबिन में बैठा हुआ था। वो अपने हाथ में पेपरवेट घुमाते हुए आहान के बारे में सोच रहा था। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था विजय कि तुम्हारा ये बेटा इतना एक दिन तुम्हारी नाक में दम कर लेगा, और देखो वही हुआ। तुम आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग में मौजूद नहीं थे और तुम्हारी कंपनी को तुमसे छीन लिया गया। इसका मतलब तुम मुसीबत में हो। तुम अच्छी कंडीशन में रहो या मुसीबत में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर न जाने क्यों दूसरों को तकलीफ देने में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। बचपन में मैं आहान के साथ में बहुत खेला, वो ये सब भूल गया है, तो एक बार फिर से वही खेल खेलने में बहुत मजा आने वाला है, राजवीर ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने किसी को कॉल किया और कॉल पर कहा, मुझे आहान ओबेरॉय से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स चाहिए। पिछले 18 सालों से वो कहाँ था, उसने क्या किया, उसकी कोई भी छोटी बड़ी बात छूटनी नहीं चाहिए। राजवीर आहान के बारे में सब कुछ पता लगाकर ही कोई एक्शन लेना चाहता था। उसने अपना पहला कदम उठा लिया था। बस अब आहान के बारे में हर एक बात पता लगने की देर थी।